पृष्ठ संख्या 39 इकाई 2 पाश्चात्य काव्य शास्त्र विद्वान समयावधि विद्वान प्लेटो समय 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व अरस्तु 384 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व लोंगिनुस प्रथम या तृतीय शताब्दी ईस्वी विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 से 1850 ईस्वी सैमुअल टेलर कोलरिज 1772 से 1834 ईस्वी बेनेडिक्टो क्रोचे 1866 से 1952 थॉमस स्टर्न्स इलियट 1888 से 1965 इवर आर्मस्ट्रोंग रिचर्ड्स 1893 से 1979 आलोचक रचनाएं प्लेटो इओन सिंपोसियोन पोलिटेया एफ फेद्रस नोमोई लॉज रिपब्लिक अरस्तु टेक्नेस रिपोरिकेस भाषाशास्त्र पेरिपोइटिकेस काव्यशास्त्र लोंगिनुस पेरिइप्सुस वर्ड्सवर्थ लिरिकल बैलड्स की भूमिका आलोचक रचनाएं प्लेटो इओन सिंपोसियोन पोलिटेया फेद्रस नोमोई लॉज रिपब्लिक अरस्तु टेक्नेस रिपोरिकेस भाषाशास्त्र पेरिपोइटिकेस काव्यशास्त्र लोंगिनुस पेरिइप्सुस वर्ड्सवर्थ लिरिकल वैलट्स की भूमिका कोलरिज बायोग्राफिया लिटरेरिया द फ्रेंड एट टू रिफ्लेक्शन चर्च एंड स्टेट कन्फेशंस ऑफ इन इंक्वायरिंग स्पिरिट क्रोचे एस्थेटिक न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक रिचर्ड्स द फाउंडेशंस ऑफ एस्थेटिक्स 1922 द मीनिंग ऑफ मीनिंग 1923 द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटररी क्रिटिसिज्म 1924 प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 साइंस एंड पोइट्री द फिलोसफी ऑफ रेटोरिक 1936 कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन वियर्ड एक्सपेरिमेंट्स इन मल्टीपल डेफिनेशन बेसिक रूल्स ऑफ रीजन इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग द स्पेक्युलेटिव इंस्ट्रूमेंट्स पोएट्रीज देयर मीडिया एंड एट्स टी एस एलियट द सेक्रेड वुड 1920 सेलेक्टेड एसेज एंसेंट एंड मॉडर्न होमेज टू जॉन डाइडन एलिजाबेथेन एसेज द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म पृष्ठ संख्या 40 प्लेटो का जन्म हुआ था एथेंस प्लेटो के गुरु थे सुकरात गुलामी मृत्यु से भी भयावह है कथन किसका है प्लेटो आदर्श राज्य से कवियों के बहिष्कार की बात किसने की प्लेटो प्लेटो ने यथार्थ किसे माना है प्रत्यय जगत को वस्तु जगत प्रत्यय जगत का अनुकरण है और कला जगत वस्तु जगत का इस प्रकार कला जगत अनुकरण का अनुकरण है यह मत किसका है प्लेटो का कला की अनुकरण मूलता की उद्भावना का श्रेय किसे है प्लेटो को कला को अनुकरण का अनुकरण मानकर उसमें मिथ्यात्व का आरोप कर किसने कला को हेय माना है प्लेटो कला के अनुकरण मूलकता के संदर्भ में प्लेटो के मत में प्रमुख दोष है कलागत सर्जनशीलता की अवहेलना प्लेटो ने काव्य हेतु माना है ईश्वरीय उन्माद दैवीय प्रेरणा को प्लेटो किस प्रकार के दार्शनिक हैं प्रत्ययवादी प्लेटो का काला विषयक कला विषयक दृष्टिकोण है, विधेयात्मक या मानवकीय। कला के मूल्य या प्रयोजन के संदर्भ में प्लेटो का दृष्टिकोण है, उपयोगितावादी और नैतिकतावादी। प्लेटो ने काव्य के तीन प्रमुख भेद स्वीकार किए हैं, अनुकरणात्मक प्रहसन और दुखांतक नाटक, वर्णात्मक डिथिरेम्ब प्रगीत। मिश्र महाकाव्य जैसे होमर के इलियट ओदेसी, प्लेटो का इओन नामक ग्रंथ संबंधित है नाट्य शास्त्र से। प्लेटो के संपूर्ण चिंतन का मुख्य उद्देश्य है आदर्श राज्य निर्माण। अरस्तु का जन्म कहाँ हुआ था? मकदूनिया के स्तगीरा नामक नगर में। अरस्तु के गुरु थे प्लेटो। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। ज्ञान की सभी शाखाओं में अबाध गति ही पूर्ण ज्ञान है, यह मत किसका है? अरस्तु का। अनुकरण एवं विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक है अरस्तु। कला प्रकृति का अनुकरण करती है, कथन किसका है? अरस्तु। अरस्तु ने अपने काव्य शास्त्र में मुख्यतः किस काव्य रूप का विवेचन किया है? दुखांतक त्रासदी का। अरस्तु के अनुसार कलाओं के भेदक तत्व कितने हैं? तीन, माध्यम, विषय और पद्धति। दुखांतक ऐसे कार्य व्यापार का अनुकरण है जो गंभीर, पूर्ण तथा कुछ विस्तृत हो, जिसकी भाषा रचना के विभिन्न भागों में पृथक पृथक वर्तमान प्रत्येक प्रकार के कलात्मक अलंकारों से विभूषित हो, जो कार्य व्यापार के रूप में हो, आख्यान के रूप में नहीं, जो करुणा और भय को उद्बुद्ध कर इन भावों का उचित विरेचन करे। दुखांतक त्रासदी की यह परिभाषा किसने दी? अरस्तु। पृष्ठ संख्या 41। अरस्तु ने दुखांतक के 6 अंग माने हैं, कथानक, चरित्र, पदयोजना, विचार, दृश्य, गीत। इनमें कथानक चरित्र और विचार अनुकरण के विषय हैं, पदयोजना तथा गीत अनुकरण के माध्यम है, दृश्य अनुकरण की पद्धति या प्रणाली है। अरस्तु के अनुसार अनुकरण का विषय है कार्यरत मनुष्य। अरस्तु के अनुसार श्रेष्ठतर मनुष्यों का चित्रण दुखांतक में तथा निम्नतर मनुष्यों का चित्रण प्रहसन में होता है। अरस्तु के अनुसार दुखांतक एवं प्रहसन में भेद का आधार है उसमें चित्रित मनुष्यों की उच्चता एवं निम्नता। अरस्तु के अनुसार कथानक से तात्पर्य है घटनाओं की कलात्मक संरचना। अरस्तु ने दुखांतक का प्रमुख तत्व किसे माना है? कथानक को। अरस्तु के अनुसार दुखांतक है कार्य व्यापार का अनुकरण। अरस्तु के अनुसार दुखांतक को रोचक एवं आकर्षक बनाने के लिए जो चीजें अनिवार्य हैं, स्थिति, विपर्यय, परिपेतेया, अभिज्ञान, अनग्नोरिसिस। अरस्तु के अनुसार पूर्ण कथानक है जिसमें आदि, मध्य और अवसान हो। अरस्तु के अनुसार कथानक कैसा होना चाहिए? गंभीर, पूर्ण तथा विस्तृत। अरस्तु के अनुसार कथानक का विस्तार होना चाहिए आनुपातिक। अरस्तु के अनुसार सौंदर्य की पहली शर्त है अनुपात। अरस्तु के अनुसार काव्य इतिहास से अधिक दार्शनिक तथा उच्चतर वस्तु है, क्योंकि काव्य सामान्य को अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है और इतिहास विशेष को। सामान्य से अरस्तु का तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति किसी अवसर पर संभाव्यता अथवा आवश्यकता के नियमानुसार कैसा आचरण करेगा, कैसा व्यवहार करेगा, इसका ज्ञान होना चाहिए। प्लेटो ने काव्य और दर्शन से विरोध माना है तथा दर्शन को काव्य से श्रेष्ठ बताया है। अरस्तु के अनुसार काव्य इतिहास और दर्शन से श्रेष्ठ क्योंकि काव्य सामान्यतया की सिद्धि करता है। अरस्तु ने कितने प्रकार के कथानकों का उल्लेख किया है? तीन, ऐतिहासिक, काल्पनिक, अनुश्रुतिक। प्लेटो ने कवि को अनुकर्ता माना है जबकि अरस्तु ने कवि को निर्माता कहा है। अरस्तु के अनुसार दुखांतक की आत्मा है कथानक। अरस्तु के अनुसार चरित्र के लिए 4 आवश्यक तत्व हैं, अच्छाई, औचित्य, यथार्थ, सुसंगति। अरस्तु ने काव्य का सर्वोत्तम रूप किसे माना है? दुखांतक को। सर्वप्रथम किसने उपयोगी कला और ललित कला का भेद स्पष्ट किया तथा ललित कला की पृथक सत्ता एवं स्वायत्तता घोषित की? अरस्तु। अनुकरण वस्तु का उन्नत रूपांतरण है, यह मत किसका है? अरस्तु। अरस्तु के अनुसार सौंदर्यात्मक अनुकरण के 3 विषय हैं, चरित्र एथोस, भाव पाथोस, कार्य व्यापार प्राक्सिस, कार्य व्यापार शब्द द्वारा इन तीनों का बोध हो जाता है। पृष्ठ संख्या 42। कार्य व्यापार में नीरत मनुष्य अनुकरण के विषय हैं, यह कथन किसका है? अरस्तु। अनुकरण के लिए यूनानी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? मिमेसिस। अरस्तु के अनुसार ललित कला मूल के अस्थाई और विशेष धर्मों को छोड़कर उसके स्थाई और सामान्य धर्मों को अभिव्यक्त करती है। कलाकृति ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रत्यक्षीकृत रूपों में मानव जीवन का अर्थात चरित्र भाव और कार्य व्यापार का आदर्शीकृत प्रतिरूपण है। यह किसके चिंतन का सार है? अरस्तु। प्लेटो और अरस्तु के काव्य संबंधी मान्यताओं में अंतर। प्लेटो के लिए केवल प्रत्यय जगत सत्य था, जबकि अरस्तु ने वस्तु जगत को भी सत्य माना है। प्लेटो की दृष्टि आदर्श परक थी, अरस्तु की यथार्थ परक। प्लेटो ने काव्य को असत्य एवं व्यक्ति निष्ठ माना है, जबकि अरस्तु ने उसे सत्य एवं सामान्य कहा है। प्लेटो के अनुसार महत्तम एवं सुंदरतम काव्य कार्य प्रकृति द्वारा होते हैं और हीनतर लघुतर कला के द्वारा, जबकि अरस्तु के अनुसार कला प्रकृति के अनिष्पादित एवं त्रुटिपूर्ण कार्यों को पूर्ण करती है, अतः कला प्रकृति से अधिक महत्वपूर्ण है। प्लेटो ने अनुकरण का संबंध वस्तु से जोड़ा था, अरस्तु ने अनुकरण का संबंध कार्य व्यापार से जोड़ा। प्लेटो ने कवि को अनुकर्ता माना है, जबकि अरस्तु ने उसे कर्ता कहा है। यूनानी में विरेचन के लिए शब्द प्रयुक्त होता है कथार्सिस। अरस्तु के अनुसार काव्य का प्रयोजन है आनंद। लोंगिनुस जन्म से यूनानी थे और उनका समय ईसा की प्रथम या तृतीय शताब्दी माना जाता है। लोंगिनुस के ग्रंथ पेहिरुप्सुस को सभी इतालवी विद्वान सेबेरतेल्लो ने 1554 में प्रकाशित किया। इसका पहला अंग्रेजी ऑफ द हाइट ऑफ एलोक्वेंस जॉन ने 1652 ईस्वी में किया। लोंगिनुस का ग्रंथ पेरिहुप्सुस मूल किस शास्त्र से संबंध है? भाषण शास्त्र से, रेटोरिक। पेरिहुप्सुस पत्र के रूप में पोस्तुमियुस तेरोन्तियानुस नामक एक रोमी युवक को संबोधित है। पत्र की भाषा यूनानी है। उदात्त सिद्धांत के प्रवर्तक है लोंगिनुस। लोंगिनुस के पूर्व किस विद्वान ने उदात्त को निरूपण किया था? केकिलियुस ने। उदात्त अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट्य है। कथन किसका है? लोंगिनुस। लोंगिनुस के अनुसार उदात्त का कार्य है सम्मोहन या लोकोत्तर आह्लाद। लोंगिनुस ने उदात्त को सहज नैसर्गिक और उत्पाद्य व्युत्पत्ति दोनों माना है। पृष्ठ संख्या 43। लोंगिनुस ने उदात्त के कितने अवरोधक माने हैं? 3। शब्दाडंबर, बालिशता, भावाडंबर। लोंगिनुस के अनुसार उदात्त के कितने स्रोत हैं? 5। महान विद्वानों की उद्भावना की क्षमता, प्रबल तथा अंतः प्रेरित भाव, अलंकारों विचारालंकार और शब्दालंकार का समुचित प्रयोग, भव्य शब्द योजना, इनमें शब्द चयन, बिंब विधान तथा शैलीगत परिष्कार अंतर्भूत है। रचना की गरिमा और उत्कर्ष का समुचित प्रभाव। उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। कथन किसका है? लोंगिनुस। अरस्तु के अनुसार करुणा और भय दुखांतक के रूप में अनिवार्य है, जबकि लोंगिनुस के अनुसार करुणा और भय क्षुद्र भाव है और उदात्त को इन क्षुद्र भावों से मुक्त होना चाहिए। यह अरस्तु और लोंगिनुस में मौलिक मतभेद है। लोंगिनुस के अनुसार उदात्त का लक्षण है अभिव्यंजना का अनिवर्चनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट्य। लोंगिनुस के अनुसार काव्य का प्रयोजन है आनंद। 1798 ईस्वी में कोलरिज और वर्ड्सवर्थ की कविताओं का संग्रह लिरिकल वैडल्स बैलड्स प्रकाशित हुआ। इस संस्करण की संक्षिप्त भूमिका एडवर्टीजमेंट शीर्षक से वर्ड्सवर्थ ने लिखी। 1800 ईस्वी में लिरिकल बैलड्स का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ, जिसकी लंबी भूमिका वर्ड्सवर्थ ने लिखी। इस भूमिका में काव्य और काव्य भाषा पर वर्ड्सवर्थ की व्यक्तिगत मान्यताओं का प्रतिपादन है। इस भूमिका को स्वच्छंदतावादी आंदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है। यह भूमिका प्रीफेस टू लिरिकल बैलड्स के नाम से प्रसिद्ध है। लिरिकल बैलड्स के नाम 4 संस्करण प्रकाशित हुए 1798 ईस्वी, 1800 ईस्वी, 1802 ईस्वी, 1815 ईस्वी। लिरिकल बैलड्स की भूमिका में अभिव्यक्त वर्ड्सवर्थ की मान्यताओं का खंडन कार्लिज ने अपनी किस पुस्तक में किया? बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817। काव्य प्रबल भाव का सहज उच्छलन है, कथन किसका है? विलियम वर्ड्सवर्थ। लिरिकल वैलेट्स किसकी कविताओं का संकलन है? वर्ड्सवर्थ और कोलरिज की। काव्य भाषा के संदर्भ वर्ड्सवर्थ की 3 मान्यताएं थी। काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। प्राचीन कवियों का भावोद्बोध जितना सहज था, उनकी भाषा उतनी ही सरल थी। भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद के कवियों की देन है। वर्ड्सवर्थ के अनुसार गद्य और काव्य में अंतर का कारण है छंद। छंद प्रत्येक महान कवि शिक्षक होता है। मैं चाहता हूँ कि या तो मैं शिक्षक समझा जाऊँ या कुछ नहीं, कथन किसका है? वर्ड्सवर्थ। पृष्ठ संख्या 44। आलोचना का चरम उद्देश्य दूसरों की रचनाओं के मूल्यांकन के नियम निर्धारण से कहीं अधिक लेखन सर्जन के सिद्धांतों का व्यवस्थापन है, कथन किसका है? कोलरिज। कविता रचना की वह प्रकार है जो वैज्ञानिक कृतियों से इस अर्थ में भिन्न है कि उसका तात्कालिक प्रयोजन आनंद है, सत्य नहीं, और वे अन्य सभी प्रकारों से उसका अंतर यही संपूर्ण से वही आनंद प्राप्त होना चाहिए। प्रत्येक घटक खंड अवयव से प्राप्त कौन स्पष्ट संतुष्टि के अनुरूप हो, यह काव्य की यह परिभाषा किसने दी? कोलरिज। स्वच्छंदतावादी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं वर्ड्सवर्थ और कोलरिज। भाषा मानव मन का शस्त्रागार है जिसमें उसे अतीत के विजय स्मारक और भावी जीवन विजय के शस्त्र एक साथ रहते हैं, कथन किसका है? कोलरिज। कल्पना सिद्धांत के प्रवर्तक है कोलरिज। कवि काव्य की सृष्टि नहीं करता, स्वयं काव्य बन जाता है, कथन किसका है? कोलरिज। फैंसी शब्द ग्रीक के फंतासिया शब्द से व्युत्पन्न है और इमेजिनेशन लैटिन के इगाजितानियो से इमेजिनेशन का हिंदी रूपांतरण कल्पना तथा फैंसी का रम्य कल्पना या ललित कल्पना है। कोलरिज ने कल्पना के कितने भेद किए हैं? 2, मुख्य और गौण कल्पना। कल्पना का कौन सा भेद कोलरिज के अनुसार कला विधायनी कल्पना है? गौण कल्पना। कोलरिज के अनुसार समस्त जागतिक प्रपंच को व्यवस्थित रूप में ग्रहण कराने वाला शक्ति ही मुख्य कल्पना है। कोलरिज के अनुसार कल्पना में एक प्रकार की संश्लेषणात्मक तथा जादुई शक्ति होती है जो विरोधी या विंसवादी धर्मों में संतुलन स्थापित करती है। उन्होंने कल्पना को एकीकरण या रूपांतरण की शक्ति कहा है। मुख्य और गौण कल्पना में अंतर। मुख्य कल्पना के अस्तित्व पर ही गौण कल्पना आश्रित है। गौण कल्पना मुख्य कल्पना के प्रतिध्वनि है। मुख्य कल्पना अचेतन और अनैच्छिक है, गौण कल्पना चेतन और ऐच्छिक। मुख्य कल्पना केवल निर्माण या संगठन करती है, इसके प्रतिकूल गौण कल्पना विघटन और संगठन विनाश और निर्माण दोनों करती है। कोलरिज के अनुसार फैंसी रम्य कल्पना की विशेषताएं हैं। फैंसी देश काल के बंधन से मुक्त एवं एक प्रकार की स्मृति मात्र है। वह इच्छा शक्ति से संचालित एवं रूपांतरित होती है। वह अपने उपयोग की सामग्री साहचर्य नियम से ग्रहण करती है, उसको उपयोज्य सामर्थ्य स्थित तथा सुनिश्चित होती है। कल्पना और फैंसी में अंतर। फैंसी बिंबों को केवल आसपास रख देती है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं करती, किंतु कल्पना उन्हें रूपांतरित करती है। पृष्ठ संख्या 45। कल्पना भावोद्दीपन को केंद्र में रखकर बिंबों में आंतरिक सामंजस्य स्थापित करती है, उनमें एक रूपता लाती है, किंतु फैंसी केवल स्थिर और निश्चित वस्तुओं तथा विचारों को काम में लाती है और साहचर्य के नियम के अनुसार उन्हें केवल एकत्र कर देती है। कल्पना अंतः प्रेरणा प्रत्यक्ष आदि अनेक स्रोतों से सामग्री ग्रहण करती है, किंतु रम्य कल्पना प्रधानतः स्मृति पर निर्भर करती है और उसी से अपनी सामग्री ग्रहण करती है। कल्पना की कार्य पद्धति जैव है, अतः उसमें जीवंतता और पूर्णता है, किंतु रम्य कल्पना की कार्य पद्धति यांत्रिक है, अतः वह निर्जीव तथा असंहत है। कल्पना प्रतिभा की उपज है, फैंसी प्रज्ञा की अंग्रेजी आलोचना को दृढ़ मनोवैज्ञानिक भूमि पर प्रतिष्ठित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? कोलरिज। क्रोचे का जन्म इटली के नेपल्स नामक नगर में 1866 में हुआ। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? क्रोचे। क्रोचे ने एस्थेटिक नामक ग्रंथ इतावली भाषा में लिखा 1900 ईस्वी में। नेपल्स में सौंदर्य शास्त्र पर क्रोचे ने 3 भाषण दिए, उन्हीं का विस्तृत रूप यह ग्रंथ है। इस ग्रंथ का प्रथम प्रकाशन 1902 में हुआ। डगलस एंसले द्वारा प्रस्तुत इसका अंग्रेजी अनुवाद 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। एस्थेटिक के 2 भाग हैं। प्रथम भाग में सौंदर्य शास्त्र का सैद्धांतिक विवेचन है और द्वितीय भाग में सौंदर्य शास्त्र का इतिहास है। आधुनिक सौंदर्य शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? बाउमगार्टेन। क्रोचे के सौंदर्य विवेचन का आधार आत्मवाद है। क्रोचे की मान्यताएं अंतर प्रज्ञा और अभिव्यंजना में अभेद है। अभिव्यंजना आत्मिक क्रिया है, प्रत्येक अंतर प्रज्ञा कला है। कला सृष्टि केवल आंतरिक है, कला रूप में है, वस्तु में नहीं। कला अखंड है, सौंदर्य आंतरिक तत्व है। कला अंतः प्रज्ञा और अभिव्यंजना में अभेद संबंध है। कला वैयक्तिक है, कला कला के लिए है, उसका कोई प्रयोजन नहीं होता। क्रोचे ने कलात्मक निर्माण के 4 चरण माने: संस्कार, अभिव्यंजना, सौंदर्य मूलक, सौंदर्य का भौतिक द्रव्यों, ध्वनियों, तानों, रेखाओं और रंगों के मिश्रणों में रूपांतरण। क्रोचे ने सहृदय भावक के साथ त्रस्ता कलाकार को भी आनंद का भागी माना है। प्रत्येक अंतः प्रज्ञा कला है। क्रोचे की इस मान्यता में दोष है, अतिव्याप्ति दोष। पृष्ठ संख्या 46। टी एस इलियट का जन्म सेंट लुई अमेरिका में 1888 ईस्वी में हुआ। बाद में लंदन इंग्लैंड में बस गए। 1948 में इलियट की साहित्य का नोबेल पुरस्कार इलियट को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। किस आलोचक ने अपनी आलोचना को निजी काव्य कर्मशाला का उपजात या काव्य निर्माण के प्रसंग में अपने चिंतन का विस्तार कहा? इलियट। किस आलोचक का मत है कि कार्यित्री और भावित्री प्रतिभाएं परस्पर पूरक हैं, अतः आलोचक और सर्जक प्राय एक ही व्यक्ति को होना चाहिए? इलियट। रुचि परिष्कार को आलोचना का अन्यतम प्रयोजन किस आलोचक ने माना है? इलियट। द वेस्टलैंड के लेखक हैं इलियट। ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट नामक प्रसिद्ध लेख के रचयिता हैं इलियट। ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट नामक प्रसिद्ध लेख इलियट के किस ग्रंथ में संग्रहित है? द सेक्रेड वुड। सच्ची आलोचना तथा सूक्ष्म परिशंसा का लक्ष्य कवि नहीं बल्कि काव्य है। कथन किस आलोचक का है? इलियट। सांस की तरह आलोचना अनिवार्य तथा नैसर्गिक क्रिया है। कथन किसका है? इलियट। कलाकार जितना उत्कृष्ट होगा उसमें अनुभविता, भोक्ता और स्वेच्छा का अंतर उतना ही स्पष्ट होगा। कथन किसका है? इलियट। कलाकृति के आस्वादन से उत्पन्न अनुभूति किसी भी अन्य साधन से उत्पन्न अनुभूति में भिन्न कोटि की होती है, अर्थात कलाजन्य अनुभूति तथा अकलाजन्य अनुभूति में भेद होता है। यह मत किसका है? इलियट। किस आलोचक के अनुसार काव्यानुभूति तथा अन्य अनुभूतियों में कोई भेद नहीं होता? रिचर्ड्स। काव्य भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से मुक्ति है। वह व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से मुक्ति है। किंतु निश्चय ही जिनमें व्यक्तित्व और भाव है वे ही जान सकते हैं कि उनसे मुक्ति की आकांक्षा का अर्थ क्या होता है। कथन किसका है? इलियट। आलोचना का मूल तत्व है अच्छी कविता के चयन की और बुरी कविता के त्याग की क्षमता। कथन किसका है? इलियट। आलोचना का महान और शाश्वत कार्य है अतीत के कवियों में प्राण संचार करना। कथन किसका है? इलियट। आलोचक का कर्तव्य है परंपरा को कायम रखना, साहित्य को स्थिर और अखंड रूप में देखना, अर्थात उसे काल द्वारा नियंत्रित रूप में न देखकर कालातीत रूप में देखना। कथन किसका है? इलियट। आलोचना की 2 सैद्धांतिक सीमाएं हैं, एक तो यह कि काव्य क्या है और दूसरा पृष्ठ संख्या 47 यह कि कार्य क्या यह अच्छी कविता है। कथन किसका है? इलियट। द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म और द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म नामक लेखों के रचयिता है इलियट। इलियट ने आलोचना के दो उद्देश्य माने हैं, कलाकृतियों का विशदन, रुचि का परिष्कार। बाद में 1956 में लिखित द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म नामक लेख में इन दो उद्देश्यों के बदले दो अन्य उद्देश्य प्रस्तुत किए, साहित्य का बोध और आस्वाद। महत्वपूर्ण आलोचक वह व्यक्ति है जो कला की वर्तमान समस्याओं में निमग्न होते हुए भी उन समस्याओं पर अतीत की मान्यताओं की प्रासंगिकता प्रदर्शित करना चाहता है। कथन किसका है? इलियट। इलियट ने आलोचना के उद्देश्यों की सिद्धि के लिए दो साधन माने हैं, तुलना विश्लेषण, निर्वैयक्तिकता तथा वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इलियट। संवेदनशीलता के असहाचर्य सिद्धांत के प्रवर्तक हैं इलियट। संवेदनशीलता के असहाचर्य के सिद्धांत के लिए इलियट फ्रांसीसी कवि आलोचक रेमी द गुर्मो के आभारी हैं। अंतर यह है कि गुर्मो ने केवल एक व्यक्ति लागोर्फ के संदर्भ में संवेदनशीलता के असहाचर्य की बात कही थी पर इलियट ने अंग्रेजी साहित्य के विशाल परिदृश्य के संदर्भ में इसका प्रयोग किया है। इलियट के अनुसार महान कवि और काव्य में भाव और विचार का समन्वय होना चाहिए। भाव और विचार का साहचर्य की ही संवेदनशीलता का असाहचर्य है। काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन है। कथन किसका है? इलियट। किस आलोचक ने अपने को साहित्य में अभिजात्यवादी, राजनीति में राजभक्त और धर्म में एंग्लो कैथोलिक घोषित किया? इलियट। रिचर्ड्स का जन्म इंग्लैंड में, बाद में अमेरिका की नागरिकता का ग्रहण। दी फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स 1922 नामक ग्रंथ में रिचर्ड्स के साथ अन्य दो सहलेखक कौन कौन थे? सीके ऑंगबेन, जेम्स वुड। दी मीनिंग ऑफ मीनिंग नामक ग्रंथ में रिचर्ड्स के सहयोगी लेखक थे सीके ऑंगबेन। मेरे विचार में आलोचना अनुभूतियों के पृथक्करण तथा मूल्यांकन का प्रयास है। कथन किसका है? रिचर्ड्स। किस आलोचक ने आलोचना को मनोविज्ञान की शाखा कहा है? रिचर्ड्स। मूल्य सिद्धांत तथा संप्रेषण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? रिचर्ड्स। विभिन्न जटिल रूपों में भावना और इच्छा की संतुष्टि की क्षमता मूल्य है। कथन किसका है? रिचर्ड्स। नैतिकता सिर्फ दुनियादारी है और आचार संहिता इष्ट सिद्धि की सामान्यतम व्यवस्था की अभिव्यक्ति है। कथन किसका है? रिचर्ड्स। आवेगों के प्रकार सजातीय तथा विजातीय के आधार पर रिचर्ड्स ने काव्य के कितने भेद किए हैं? दो, अपवर्जी तथा अंतर्वेशी। पृष्ठ संख्या 48। रिचर्ड्स ने आलोचना के दो भेद माने हैं, आलोचनात्मक और प्राविधिक। रिचर्ड्स के अनुसार आलोचना के दो आधार स्तंभ हैं, मूल्य का लेखा, संप्रेषण का लेखा। संप्रेषण का अर्थ न तो अनुभूति का यथावत हूबहु अंतरण है और न दो व्यक्तियों के बीच अनुभूति का तादात्म्य, बल्कि कुछ अवस्थाओं में विभिन्न मनों की अनुभूतियों की अत्यंत समानता ही संप्रेषण है। कथन किसका है? रिचर्ड्स। रिचर्ड्स के अनुसार संप्रेषण अचेतन प्रक्रिया है तथा कलाकार की अनुभूति और कलाकृति में जितना संवाद मेल होगा उसी के अनुपात में उसकी संप्रेषण क्षमता होगी। रिचर्ड्स ने भाषा के कितने रूप माने हैं? दो, वैज्ञानिक और रागात्मक। रिचर्ड्स के अनुसार आलोचना का चरम लक्ष्य है संप्रेषण। किस आलोचक ने सृष्टा कलाकार के मनोविज्ञान को अध्ययन का निष्फल बंजक क्षेत्र कहा है? रिचर्ड्स। रिचर्ड्स और इलियट में एक प्रमुख अंतर यह है कि रिचर्ड्स ने काव्य पर भावक सहृदय की दृष्टि में विचार किया है, जबकि इलियट ने काव्य की मीमांसा मूलतः सृष्टा कलाकार की दृष्टि से किया है। रिचर्ड्स का मूल्य मीमांसा व्यक्तिनिष्ठ है या सामाजिक निष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ। रिचर्ड्स ने आलोचना का आधार स्तंभ किसे माना है? मूल्य और संप्रेषण को। रिचर्ड्स के अनुसार काव्य का एकमात्र प्रयोजन आवेगों की संतुष्टि के द्वारा संतुलित विश्रांति की उपलब्धि है। स्वच्छंदतावाद की विशेषता। स्वतंत्रता, मुक्ति की आकांक्षा, कल्पना और संवेग की महत्ता, व्यक्तिकता, प्रकृति की ओर उन्मुखता। इन डिफेंस ऑफ पोएजी नामक ग्रंथ के लेखक हैं शेली। निगेटिव कैपेबिलिटी, निषेधात्मक क्षमता सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? किट्स। उत्तर, आधुनिकता का प्रचलन कब से हुआ? 20वीं शती के 7वें और 8वें दशक से। आधुनिकतावाद की विशेषताएं, इतिहास और परंपरा से विच्छेद, गहन स्वात्म चेतना, तत्वस्था और अप्रतिबद्धता, व्यक्ति स्वतंत्र रूप और प्रयोग, अपने आप में बंद दुनिया, अपारदर्शी भाषा। पृष्ठ संख्या 49। न्यू क्रिटिसिज्म 1941 ईस्वी नामक ग्रंथ के लेखक हैं रैनसम। नई समीक्षा के प्रमुख आलोचक रेनर्स, ब्रुक्स, रॉबर्ट पेनवारेन, ब्लेकमर। प्राकृतवाद के प्रवर्तक कौन है? जोला। हिंदी के प्रमुख प्राकृतवादी लेखक हैं पांडेय, बेचन शर्मा, उग्र, ऋषभ चरण जैन। आंदोलन के रूप में प्रतीकवाद का प्रारंभ कब से हुआ? 1886 ईस्वी में फ्रांस से। मिथ और प्रतीक के में प्रमुख अंतर है, मिथ में कथा तत्व होता है, प्रतीक में नहीं। फैंटेसी मनोविज्ञान का शब्द है, इसका संबंध स्वप्न और अवचेतन मन में घटित होने वाली घटनाओं की विघटित और बेतरतीब बिंबावलियों से है। हिंदी के किस कवि में फैंटेसी का प्राचुर्य है? मुक्तिबोध। बिंब क्या है? किसी भाव, विचार, वस्तु, घटना आदि का इंद्रिय संवेद्य। काल्पनिक शब्द बद्ध समूर्तन। सन 1908 में हुलमे और फ्लिंट ने बिंबवाद पर एक घोषणा पत्र प्रकाशित किया। आचार्य शुक्ल ने फ्लिंट को ही इसका प्रवर्तक माना। 1912 से 17 तक लंदन और अमेरिका में बिंबवाद का एक आंदोलन चला। इसके अगुआ थे एजरा पाउंड। हिंदी समीक्षा में बिंब शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य शुक्ल ने अपने एक निबंध भाव या मनोविकार में किया। अंग्रेजी शब्द मिथ को हिंदी में मिथक कहा जाता है। मिथक के अतिरिक्त इस शब्द के लिए दंत कथा, पुरावृत्ति, धर्म गाथा, पुरा कथा, पुराख्यान आदि शब्दों का भी प्रयोग होता है। मिथ यूनानी शब्द माइथोस से विकसित हुआ, जिसका अर्थ है अतर्क, आख्यान। मिथक को आदिम मनुष्य की दमित यौन भावनाओं का प्रतीक मूलक व्यक्तिकरण किसने कहा? शायद। मिथक को प्रजातीय सामूहिक अवचेतन का आदिम बिंब किसने कहा? युंग। मिथक को विशुद्ध मानसिक रूपात्मक क्रिया किसने कहा? लेवी स्ट्रॉस। किस विद्वान ने मिथक की उत्पत्ति भाषा से माना है तथा मिथक को भाषा का रोग कहा है? नेक्स मुलर। मिथकीय समीक्षा के प्रवर्तक माने जाते हैं नार्थप फ्राई। हिंदी में आलोचनात्मक आख्यान के रूप में यथार्थवाद के पहले प्रयोक्ता है प्रेमचंद। यथार्थवाद और आदर्शवाद सन 1937 नामक लेख किसका है? जयशंकर प्रसाद। प्रसाद ने हिंदी में यथार्थवाद का जनक किसे माना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। प्रमुख सिद्धांत प्रवर्तक प्रत्ययवाद प्रवर्तक प्लेटो। अनुकृति एवं विरेचन त्रासदी अरस्तु। उत्तत सिद्धांत लोंगिनुस। संप्रेषण एवं मूल्य सिद्धांत रिचर्ड्स। पृष्ठ संख्या 50। वस्तुनिष्ठ समीकरण इलियट। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत इलियट। संवेदनशीलता का असाहचर्य इलियट। अभिव्यंजनवाद क्रोचे। परंपरा की परिकल्पना एवं व्यक्ति प्रज्ञा का सिद्धांत इलियट। कल्पना सिद्धांत कोलरिज। द्वंद्ववाद हीगेल। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स। महान यथार्थवाद जॉर्ज लुकाच। मिथकीय समीक्षा नार्थप फ्राई। स्वच्छंदतावाद वर्ड्सवर्थ। प्रमुख सिद्धांत प्रवर्तक अंतर विरोध प्रवर्तक क्लिंच ब्रुक्स। विखंडन प्रवर्तक जैक डेरिडा। विडंबना और विसंगति प्रवर्तक क्लिंट ब्रुक्स। विरोधाभास आयरनी रॉबर्ट पेन वारेन। साहित्य का समाजशास्त्र इपालित
टेन अजनबीपन मार्क्स किसके मतानुसार भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच की खाई ही अजनबियत है। सिक्के मनुष्य की कालिक स्थिति और प्रकृति के दुराव को अजनबीपन किसने कहा है? शीलर प्लेटो के अनुसार परम सत्य है प्रत्यय। प्रमुख मार्क्सवादी समीक्षक लुकाच ब्लाक बेंजामिन गोल्डमन एडार्नो। प्रमुख बिंबवादी लेखक एजरा पाउंड लोवेल द लिटल डी एच लॉरेंस रिचार्ड एलिंगटन। प्रमुख प्रतीकवादी बादलेयर मेलार्मे रेबो। अजनबीपन को आधुनिक सभ्यता का अनिवार्य फल किसने माना है? मार्कुजे। नई समीक्षा के प्रमुख आलोचक रैंसम ब्रुक्स रॉबर्ट पेन वारेन ब्लेकमर। प्रमुख अस्तित्ववादी है जास्पर्स हाइडेगर सार्त्र किर्केगार्ड पास्कल नीत्शे काफ्का कामू। अस्तित्ववाद के प्रवर्तक माने जाते हैं सोरेन किर्केगार्ड और अडस्कल। ग्रामेटोलॉजी नामक ग्रंथ के रचयिता है जॉक डेरिडा। अनुकरण सत्य से तिगुना दूर है मत किसका है? प्लेटो। कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है मत किसका है? कॉलरिज। काव्य भाषा के रूप में ग्रामीण भाषा के पक्षधर थे वर्ड्सवर्थ। काव्य जीवन की आलोचना है कथन किसका है? मैथ्यू अर्नाल्ड। पृष्ठ संख्या 51 क्रोचे के अभिव्यंजना सिद्धांत को किस भारतीय आचार्य के सिद्धांत से जोड़ा जाता है? कुंतक के वक्रोक्ति सिद्धांत से। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान किसने माना? रामचंद्र शुक्ल। कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं व्यक्तित्व से पलायन है कथन किसका है? इलियट। नई समीक्षा में तनाव शब्द के प्रवर्तक है एलन टेट। एम्बिगुइटी अनेकार्थता नई समीक्षा में इस शब्द के प्रवर्तक है विलियम एम्पसन। सेवन टाइप्स ऑफ एम्बिगुइटी के रचनाकार है विलियम एम्पसन। अजनबीपन किस विचारधारा की विशेषता है? अस्तित्ववाद। अंतर विरोध पैराडॉक्स शब्द के प्रस्तुत करता है क्लिंट ब्रुक्स। विखंडन डिकंस्ट्रक्शन शब्दावली के नई समीक्षा में प्रयोगता है जॉक डेरिडा। कला अनुकृति की अनुकृति है किसका मत है? प्लेटो। अर्थमीमांसा सिद्धांत के प्रवर्तक है रिचर्ड्स। किस पाश्चात्य आलोचक ने काव्य के मनोवैज्ञानिक मूल्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया? रिचर्ड्स। आदिम मनुष्य की भाषा को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? मिथक। बिंब कितने प्रकार के हैं? दो इंद्रिय बिंब और मानस बिंब। प्रतीक कितने प्रकार की है? दो परंपरागत और वैयक्तिक। बिंब का प्रवर्तक कौन है? फ्लिस्ट। कल्पना को नैतिक शक्ति किसने कहा? शैली। आचार्य शुक्ल ने कल्पना के कितने भेद किए? दो विधायक कल्पना और ग्राहक कल्पना। एडिशन के एसेज ऑन इमेजिनेशन का हिंदी अनुवाद कल्पना का आनंद शीर्षक से किया रामचंद्र शुक्ल। कल्पना को काव्य की आत्मा किसने माना? कॉलरिज। यथार्थवाद का प्रवर्तक कौन है? वाल्टेयर। पश्चिम में कला के कितने भेद माने गए? दो ललित कला और उपयोगी कला। कला कला के लिए इस मत के प्रवर्तक हैं ब्रैडले। कला कला के लिए इस मत को मानने वाले प्रमुख विद्वान हैं ब्रैडले वाल्टर पेन फ्रीसर सलर ऑस्कर वाइल्ड। किन पाश्चात्य विद्वानों ने लोक मंगल को काव्य हेतु माना है? प्लेटो रस्किन टॉल्स्टॉय। आनंद को काव्य प्रयोजन किसने माना? सीलर शैली। अपने आप को किसने प्रौढ़तावादी माना? इलियट। पाश्चात्य देशों में साहित्य को क्या कहा गया है? कला। काव्य जीवन का प्रतिबिंब है जो कि इसके नित्य सत्य में अभिव्यक्त रहता है। पृष्ठ संख्या 52 कथन किसका है? शैले। किस विद्वान ने प्राप्ति का सर्वप्रथम गंभीर और सर्वांगीण विवेचन किया? अरस्तु। कल्पना को रासोन्मुख भावना किसने कहा? हॉब्स। जब कोई पदार्थ किसी भाव या विचार का स्वीकृत उपलक्षण या संकेत बन जाता है तो वह कहलाता है प्रतीक। बिंब का एक भेद, प्रत्यक्ष बिंब किस दृष्टि से विभाजित है अभिव्यंजना। केवल वे ही बिंब काव्यात्मकता से युक्त माने जाते हैं जो कि भावात्मा हो। कथन किसका है? कॉलरिज। प्रतीकों के वर्गीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सफल प्रयास किसने किया? अर्बन। साहित्य में यथार्थवाद के उदय का मूल कारण है साहित्य में अतिकल्पना का विरोध। यथार्थवादी विचारधारा का जन्म किस शताब्दी में हुआ? 19वीं शताब्दी। पागल प्रेमी और कवि तीनों कल्पना से ओतप्रोत रहते हैं। कथन किसका है? शेक्सपियर। प्रतीक अहम की पारा से निकलने के द्वारा है। कथन किसका है? बोरिस पेस्टरनाक। आदि बिंब की चर्चा किसने की? युंग। अभिव्यंजना की दृष्टि से बिंब के कितने भेद हैं? दो, प्रत्यक्ष और अलंकृत। बिंब का प्रमुख कार्य है संप्रेषणीयता। काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है। कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र। स्वच्छंदतावाद का जन्म कब हुआ? 18वीं सदी के अंतिम दशक और 19वीं सदी के आरंभ में। प्रकृति की ओर वापस लौटो, बैक ऑफ नेचर का नारा किसने दिया? रूसो। स्वच्छंदतावाद की प्रमुख विशेषताएं, विद्रोह की प्रवृत्ति, कृत्रिमता से मुक्ति, मध्य युग की ओर प्रत्यावर्तन, कल्पना का प्राधान्य, अद्भुत तत्व, व्यक्तिवाद, सौंदर्यमयी दृष्टि और एन्द्रियता, प्रकृति प्रेम। प्रमुख स्वच्छंदतावादी कवि कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, शेलली, किट्स। क्लासिसिज्म का हिंदी रूपांतर श्रेण्यवाद किसने किया? नलिन विलोचन शर्मा। कल्पना की ऊंची से ऊंची उड़ानों में भी कुछ बंधन, कुछ संयम रहता है। अभिजात्यवादी कवि मनुष्य को उस समीपता को, उसकी इस सीमा को कभी भूलना नहीं। पृष्ठ संख्या 53। वह जानता है धरती से उसका अटूट नाता है। कथन किसका है? ह्यूम। यूरोप में साहित्य तथा कला विवेचन की दृष्टि से अंधकार युग कहलाता है। 6वीं सदी से 15वीं शताब्दी तक का युग। नव्य अभिजात्यवाद का उत्थान कहाँ हुआ? फ्रांस, 17वीं शताब्दी। इंग्लैंड के प्रमुख नव्य अभिजात्यवादी आलोचक हैं वेन जॉनसन, 1573 से 1637, जॉन ब्राइडन, 1631 से 1700, अलेक्जेंडर पोप, 1688 से 1744, सैमुअल जॉनसन, 1740 से 1795, एसे ऑन क्रिटिसिज्म, 1711 के रचयिता अलेक्जेंडर पोप, एन एसे ऑफ ड्रेमेटिक पोएजी, 1668 ईस्वी के रचयिता ड्राइडन। इंग्लैंड में नव्य अभिजात्यवाद का दौर है 17वीं सदी से 18वीं सदी। नव्य अभिजात्यवाद का पुनः उदय कब हुआ? फ्रांस में 19वीं सदी के अंत में, इंग्लैंड तथा अमेरिका में 20वीं सदी के आरंभ में। प्रमुख नव्य अभिजात्यवादी है मैथ्यू अर्नाल्ड, इरविंग, डेविड टी एस एलियट, ह्यूम। 20वीं सदी में किस आलोचक ने अभिजात्यवाद को दार्शनिक आधार दिया? ह्यूम। रूसो के अनुसार रोमांटिसिज्म में मनुष्य को संभावनाओं का अनंत कोश माना गया, जबकि क्लासिकी दृष्टि में मनुष्य वस्तुतः सीमित है और परंपरा तथा नियमों के अनुशासन द्वारा मूल्यवान उपलब्धि करता है। कथन किसका है? ह्यूम। अभिजात्यवाद और नव्य अभिजात्यवाद में प्रमुख अंतर है। नव्य अभिजात्य में परंपरा के अनुसरण के बजाय मूल्य और आदर्शों के अनुसरण को प्राथमिकता दी गई। एक स्पष्ट प्रवृत्ति के रूप में अभिजात्यवाद क्लासिसिज्म की शुरुआत का श्रेय किसे दिया गया? होरेस। क्लासिक्स लैटिन शब्द है जिसका प्रयोग रोम में करदाताओं के सर्वोच्च वर्ग के लिए किया जाता था। क्लासिसिज्म के लिए हिंदी में शब्द प्रयुक्त हुआ अभिजात्यवाद, शास्त्रवाद, श्रेव्यवाद। अभिजात्यवाद के बीच सर्वप्रथम किसके काव्य चिंतन में मिलता है? प्लेटो। अभिजात्यवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां, प्राचीन साहित्यिक परंपरा का अनुकरण, मर्यादा और दात्य आत्मा की गरिमा स्वच्छता तथा प्रशांति पर बल, कला को वस्तुनिष्ठ मानना, भावावेग के स्थान पर भाव संयम और भाव व्यवस्था पर बल, सार्वभौमिकता, निर्वैयक्तिकता, परंपरानुगति, कथा की दिशा में उन्मुक्तता, रोमांटिसिज्म, स्वच्छंदतावाद को परंपरावादी कला के विरुद्ध नवोन्मेषकारी सौंदर्य शास्त्रीय सिद्धांत किसने कहा? एमिल लेगुई तथा लुई कैजानिया ने। पृष्ठ संख्या 54। रोमांटिसिज्म शब्द का परिभाषिक तौर पर सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? 1969 ईस्वी में फ्रांस में। रोमांटिसिज्म का क्लासिसिज्म की विपरीत प्रवृत्ति के रूप में अर्थ निर्धारण किसने किया? श्लेगल। नई समीक्षा के जनक माने जाते हैं टी एस एलियट। द प्रॉब्लम ऑफ स्टाइल के रचयिता है मिड लटन मरे। रिवेल्यूएशंस 1936 नामक ग्रंथ के रचयिता है एफ आर यूवियस। आंग्ल अमेरिकी साहित्य के सन 1930 से 60 तक के समय को साहित्यिक आलोचना में क्रांति का युग किसने कहा? जॉन हॉलावे ने। नई समीक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पिनगर्न ने सन 1910 में अपने एक लेख में किया। नई समीक्षा शब्द को पारिभाषिक शब्दावली का रूप देने का श्रेय रैनसम की 1441 में प्रकाशित पुस्तक न्यू क्रिटिसिज्म को है। साहित्यालोचन की किस पद्धति में कृति को केंद्रीय स्थान दिया गया? नई समीक्षा आलोचना में कविता के विस्तृत विश्लेषण और घनिष्ठ गहन पाठ की परंपरा किस समीक्षा पद्धति से कायम की? नई समीक्षा एबीसी ऑफ रीडिंग नामक एक ग्रंथ के रचयिता हैं एजरा पाउंड। नई समीक्षा की महत्वपूर्ण कृतियां ग्रंथ रचयिता हाउ टू टीच रीडिंग एफ और लुईस। How to read a page, Richards. Interpretation in teaching, Richards. Sacred Wood, 1920, Eliot. Principle of Literary Criticism, 1924, Richards. Seven types of ambiguity, Empson. Guard without thunder, 1930, Ransom. रिवेल्यूएशन 1936, द कॉमन परसूट 1953, लिविस ऑन द लिमिट्स ऑफ पोएट्री 1948, एलन टेट द फॉरलोन डेमन 1955, एलन टेट लैंग्वेज एज जेस्चर आर पी ब्लैकमर लायन एंड द हनी कोम्ब 1956 आर पी ब्लैकमर द ग्रामर ऑफ मोटिव्स केनेथ बर्क परमनेंस एंड चेंज केनेथ बर्क द फ्यूजिटिव नामक काव्य पत्रिका का संपादन किसने किया जॉन क्रो रैमसन।